कहां पर हूं? एकांत के अंदर हूं। मैं तो बीच के ऊपर खड़ा हूं, मुझे कोई नहीं देखता। मैं तो जो है ना 3-स्टार होटल के रूम के अंदर हूं, मुझे कोई नहीं देखता। मैं तो क्लब के अंदर हूं, क्लब के अंदर मुझे अपने पार्टनर के अलावा कोई नहीं देखता। अरे मैं तो पार्क में चला गया, मुझे तो कोई नहीं देखता। इंसान यही समझता है ना। इंसान गुनाह करता है तो ये सोचता है कि मैं तो एकांत में हूं, मुझे कोई नहीं देखता। लेकिन कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है कि कभी मत समझना कि तुमको कोई नहीं देखता, कभी मत समझना कि कोई नहीं देखता। फरमाया कि ला युद्रिकुल अबसार वहुवा युद्रिकुल अबसार। अल्लाह की आंखें तुमको हर जगह पर देख रही है, अल्लाह की आंखें तुमको हर जगह देख रही है। याद रखो मेरे दोस्तों, ये आंख के जरिए आदमी क्या देखता है अल्लाह के इल्म में, अल्लाह की जानकारी में। ये कान से क्या सुनता है अल्लाह की जानकारी में। इस दिल में क्या प्लानिंग बनाता है अल्लाह की जानकारी में। इस दिमाग से क्या सोचता है अल्लाह की जानकारी में। इस जबान से क्या बोलता है अल्लाह की जानकारी के अंदर। और याद रखो मेरे दोस्तों, आज हमारा मामला क्या है कि हम इन नेमतों को बहुत मिसयूज कर रहे हैं, बहुत मिसयूज कर रहे हैं। अल्लाह ने आंख इसलिए दी थी ताकि काबा शरीफ को देखो। अल्लाह ने आंख इसलिए दी थी कि मां बाप की तरफ मोहब्बत की नजर से देखो। हदीस पाक का मफहूम है, जो अपने मां बाप को मोहब्बत की नजर से देखता है अल्लाह उसको एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाते हैं। खुदा ने आंख इसलिए दी थी कि मां बाप को मोहब्बत की नजर से देखो। खुदा ने आंख इसलिए दी थी कि अल्लाह का कुरान खोल करके पढ़ो, अल्लाह ने आंख इसलिए दी थी। खुदा ने आंख इसलिए दी थी कि औलिया अल्लाह के नूरानी चेहरों को देखो, खुदा ने आंख इसलिए दी थी। अल्लाह ने आंख इसलिए दी थी कि अपने भाई बहनों से, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से मोहब्बत की नजरें मिलाओ। अपने भाई बहनों से, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से मोहब्बत की नजर मिलाओ, अल्लाह ने इसलिए आंख दी थी। लेकिन इसी आंख का आज हम कितना मिसयूज करते हैं मेरे दोस्तों। आज हमारी आंख से जो गुनाह होते हैं हम समझते हैं। किन किन लड़कियों पर हमारी आंखें पड़ती है, और इतने पावरफुल कैमरा है कि एक मरतबा नजर पड़ती है तो सारी चीजें जो है हमारे दिमाग में आ जाती है ना। बहुत पावरफुल हमारी आंखें हैं। और याद रखो मेरी इस बात को, लोग क्या समझते हैं कि जिना किसको कहते हैं? जिना इसको कहते हैं कि खराब काम करना, उसका नाम जिना। ये तो सब जानते हैं। लेकिन आज मैं आपको हदीस की रोशनी के अंदर, सहाबा किराम के फरमान की रोशनी में जिना की पूरी बात समझा दूं ताकि बचना आसान हो जाए। एक रिवायत में एक सहाबी के अल्फाज हैं, बहुत प्यारी बात फरमाई। फरमाया कि अल आइनु तजनी व जिनाउहु अर्रुया। इंसान की आंखें भी जिना करती है, और आंखों का जिना ये है कि इन आंख के जरिए से पार की औरतों को देखना, इन आंखों के जरिए पार की औरतों को देखना, ये आंख का जिना है। पहले जब हमारा मशवरा हुआ था तो हमने रखा था कि भाई दो मजलिस अलग अलग करेंगे, एक नौजवानों के लिए एक बड़ी लोग के लिए। यहां आकर के फिर हमने मशवरा किया कि नहीं भाई नहीं, सारी मजलिस एक साथ रखो। मुझे पूछा गया इसका रीजन क्या, आपने फैसला क्यों बदल लिया? मैंने कहा कि जो बातें हमारे नौजवानों को कहने की जरूरी है वही बातें हमारे वडिलों को कहने की भी जरूरत है। कड़वा अनुभव हुआ, बहुत कड़वा अनुभव। कड़वा अनुभव ऐसा हुआ कि एक जगह के ऊपर जो है मैंने बयान किया, और बयान किस उन्वान पर किया वो भी मैं आपको बतला दूं कि ये जो गरबे की रातें आती है नवरात्रि, तो उसके अंदर हमारे नौजवान गरबे देखने जाते हैं, गलत काम करते हैं, नहीं जाना चाहिए। भाई उनके त्यौहार में हम क्यों जाए? हमों का झगड़े हो, झगड़े का काम नहीं करना चाहिए, झगड़े से दूर रहना चाहिए, हम क्यों जाए वहां पर? उसके अंदर जो है बहुत सारी बुराइयां हैं। तो मैंने बयान किया कि इस तरीके से जो लड़कियां बन ठन करके जो है और जो है वो नेट सूट और जो है सरारा सूट और चोरी और ये पहन के निकलती है, तो उस पर जो है अच्छी अच्छी नजरें हमारी पड़ती है, तो उसकी वजह से आंखों का जीना होगा, ये होगा, वो होगा, बुरा ये हमने बयान की। अब बयान करने के बाद दूसरे दिन वहाँ खाने की मजलिस थी, हम खाना खाने गए, तो पहले हमारे नौजवान दोस्तों से मुलाकात हुई, तो नौजवान दोस्तों ने हमको क्या बतलाया आपको मैं वो बताऊं। मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब कल जो आपने बयान किया ना पराई औरतों को देखने का, लड़कियों को देखने का, बहुत अच्छा आपने बयान किया। मैंने कहा क्यों, तो कहा हमारे यहाँ जितने भी ये बुढ़े वड़ील लोग हैं सब यही धंधे करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही, ये नौजवानों का बयान था। उसके बाद जब खाना खाने की बारी आई तो वड़ीलों के साथ एक खुंचे में खाने बैठे। जब खाना चालू हुआ तो गुजिश्त हमारे हजरत मोहतमिन साहब भी मौजूद थे, तो वहां पर बात चालू हुई गुजिश्त कल के बयान की। तो उसमें जो है वड़ीलों के साथ मैं खाना खा रहा था, तो वो वड़ील लोग मुझे यूं कहने लगे कि मुफ्ती साहब कल जो आपने बात कही ना बिल्कुल 100% सोने की बात कही। मैंने कहा क्या बात, कि वो जो आपने कहा ना कि वो लड़कियों को देखने वाली बात और उससे जीना होता है, गुनाह होता है। मैंने कहा क्यों, तो कहा आपने यहां जितने भी जुआनिये हैं सब इसी बुराई में पड़े हुए हैं, तो वड़ील इनको गुनेगार कह रहे हैं और जवान इनको गुनेगार कह रहे हैं। मैंने नतीजा निकाला कि इसका रिजल्ट ये हुआ कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमारा 100% समाज इस गुनाह में पड़ा हुआ है। लाहौल पढ़ने की बात है दोस्तों, 100% समाज हमारा इस गुनाह में पड़ा हुआ है कि नहीं है। देखो मैं आपको एक सीधा साधा सैंपल बताऊं, दो केमिस्ट है, एक केमिस्ट के ऊपर सेल्स गर्ल्स है और दूसरी केमिस्ट के ऊपर जो है सेल्स जो है यंगस्टर्स है, मर्द बैठे हुए। एक केमिस्ट के काउंटर के ऊपर जो है लड़कियां बैठी है, एक के ऊपर मर्द बैठता है। आप बतलाओ कि आप दवा लेने कहां जाएंगे, कहां दवा लेने जाएंगे। बल्कि पेपर के अंदर जो एडवर्टाइज आती है ना, जोइए छे वांटेड जोइए छे, उसमें आप देखेंगे तो जितनी भी दुकानें हैं उसमें से ज्यादातर मांगनी यही होती है कि सेल्स गर्ल्स की जरूरत है कि नहीं है। मैं सही ऑपरेशन कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, अगर गलती पर हो तो माफी मांगता हूं, है कि नहीं है। जिस किसी को देखो तो अपना जो है पीए रखना है, सेक्रेटरी रखना है, अपना मददगार रखना है, अपना जमणा हाथ रखना है, डाबा हाथ रखना है, और मैं कहूं तो बेड पर सोने वाली रखनी है, तो वो लड़कियां ही रखनी है कि नहीं रखना। अल्लाह माफ करे हमारे समाज को। तो आज मसला बहुत नाजुक हो चुका है। तो सहाबी के अल्फाज हैं, फाइनल आईन तजनी वजिनाहु अर्रुया, अरे आंखें भी जिना करती है और आंख का जिना है पराई औरतों को देखना। ये आंख का जिना है। इस जगह पर एक बात जरा मैं खुल करके मैं आपको बतला दूं कि मेरे बुजुर्गों, आंख से स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग कहां से होती है, आंख से, फिर दिल के अंदर उसकी तस्वीर आती है, है ना, दिल में तस्वीर आती है, और फिर हाथ में कलम आता है, हाथ में कलम आता है, दो एल जमा होते हैं, दो एल, समझते हो, दो एल का मतलब लव लेटर, दो एल जमा होते हैं कलम आने के बाद, और फिर उसके बाद क्या होता है, हाथ में टेलीफोन का रिसीवर आता है, उसके बाद कॉन्टेक्ट होते हैं, फिर टाइमिंग फिक्सिंग होती है, और फिर आदमी जो है ईमान के बेचने पर मजबूर हो जाता है, अपने अखलाक को पामाल करने के लिए निकल जाता है, अपनी जिंदगी का जनाजा निकलने के लिए तैयार हो जाता है। यही चीजें होती है। याद रखो एक लतीफे की बात, लेकिन बड़ी काम की बात, आंख कितनी खतरनाक चीज है। ये जो है ना मिस्टर शैतान, जानते हो आप उसको? अरे मिस्टर शैतान को जानते हो कि नहीं? इस वक्त भी यहां हाजिर होंगे, आपको घड़ी दिखा रहे होंगे कि देखो बहुत लंबी बात हो गई, चलो अब घर जाके सो जाओ, भूख भी लगी, आज मगरिब बाद का बयान है। ये मिस्टर शैतान दिल में बात डालते होंगे, लेकिन जब आए तो लाहौल पढ़ना कि नहीं हम तो सुन के ही जाएंगे, उसके बगैर जाएंगे नहीं, उसको अपने ऊपर काबू मत देना। तो मिस्टर शैतान हमारे बहुत पुराने दुश्मन है, नए नहीं, बहुत पुराने। जब उसको अल्लाह ने अपनी अदालत से निकाला था, आसमान से निकाला था, बहुत लंबा छोड़ा किस्सा है, वलसाड़ तो मैं आता ही रहता हूं, कभी इंशाल्लाह सुना देंगे। तो आदम अलैहिस्सलाम के सामने सिजदा न करने के जुर्म में अल्लाह ताला ने जब शैतान को जन्नत से निकाला, आसमान से निकाला, तो शैतान ने अल्लाह के दरबार के अंदर एक अर्जी रखी। क्या अर्जी रखी? फरमाया के तुम लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ اے خداوندہ، اسی انسان کی وجہ سے مجھے نکالا جا رہا ہے، تو میں تجھ سے ایک مانگنی کرتا ہوں کہ اللہ مجھے قیامت تک زندگی عطا فرمانا۔ قیامت تک زندگی، بہت لمبی زندگی مانگی شیطان نے، قیامت تک میں نہیں مروں۔ ہاں، قیامت کے دن سب کو مرنا، اس وقت مریں گے۔ قال رب انزلنی الى یوم یبعثون، خداوندہ مجھے قیامت تک تو مہلت عطا فرما، زندگی عطا فرما۔ اللہ نے کہا جا ٹھیک ہے، قیامت تک تو زندہ رہنا۔ اب قیامت تک کی زندگی تو مل گئی، لیکن اس نے اللہ سے کیا کہا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، اے اللہ میں اس انسان کو دنیا میں جا کر کے چھوڑنے والا نہیں، اس انسان کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا، آسمان سے نکالا گیا، تو میں اس انسان کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں انسان کے سامنے کی طرف سے حملے کروں گا، ومن خلفہم بیک سائڈ سے، پیچھے کی طرف سے حملہ کروں گا، وعن ایمانہم انسان کی رائٹ سائڈ سے، جمڑی سائڈ سے حملہ کروں گا، وعن شمائلہم انسان کی لیفٹ سائڈ سے، ڈابی سائڈ سے میں حملہ کروں گا۔ چار سائڈ سے، آگے پیچھے جمڑے اور ڈابے، چار طرف سے انسان کو گھیرے میں لوں گا۔ دیکھیے، اگر نظروں کو سامنے لگاتے ہوئے چلو، معلوم نہیں کس کے دل پر تیر لگ جائے، پیچھے مڑ کر کے دیکھو تو معلوم نہیں کس بال کی جال میں پھنس جاؤ، جمڑی طرف دیکھ کے چلو تو معلوم نہیں کس کے گھر کے اندر ناپاک نظر چلی جائے، ڈابی طرف بھی یہی مسئلہ۔ چاروں طرف شیطان کی جال ہے، لیکن میرے والساڑ کے مسلمان دوستو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے شیطان کو دو جانب بھلوا دی ہے، ہے کہ نہیں ہے؟ دو جانب بھلوائی کہ نہیں بھلوائی؟ کون سی دو جانب باقی رہ گئی؟ ارے بولو نا، کون سی؟ اوپر کی اور نیچے کی۔ اگر اوپر دیکھ کے کل چلنا نا محلے میں، لوگ کیا کہیں گے؟ مرولی بھیجنے کے قابل ہے۔ مرولی جانتے ہو نا، ہمارے یہاں مینٹل ہاسپٹل بہت فیمس ہے، اوپر دیکھ کے چلو گے تو لوگ کہیں گے مرولی بھیجنے کے لائق ہے، اس لیے سوری اوپر دیکھ کے مت چلنا، ورنہ اپارٹمنٹ کے اوپر نظر چلی جائے گی، وہاں بھی خطرہ ہے۔ اب لاسٹ سائڈ کون سی باقی رہی؟ کون سی سائڈ؟ ارے ذرا زور سے کہو، نیچے کی سائڈ۔ یاد رہے گا نا، نیچے۔ میں نہیں کہتا، قرآن گارنٹی دیتا ہے۔ فرمایا کہ قل للمؤمنین، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے ہمارے پیغمبر، کل قیامت تک آنے والے ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ يغضوا من ابصارهم، کہ جب راستے پر چلے تو اپنی نظروں کو نیچا کر کے چلے۔ یہ قرآن کہتا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے ہمارے پیغمبر آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ جب راستے پر چلے تو اپنی نظروں کو نیچا کر کے چلا کرے۔ اگر نظروں کو نیچا کر کے چلیں گے تو قرآن نے بڑے حکیم انداز میں ارشاد فرمایا کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ और देखिए, चूंकि ये कैसेट औरतों तक भी पहुंचेगी और इंशाल्लाह आप भी अपने घर की औरतों को बात पहुंचाओगे ना। अरे पहुंचाओगे कि नहीं पहुंचाओगे? अगर मार्केट के अंदर पंजाबी ड्रेस का सेल पड़ा हो तो बात पहुंचाते हो कि नहीं पहुंचाते हो? तो आज ये बात भी पहुंचा देना कुरान की। कुरान ने बहुत साफ लफ्जों में कह दिया, सिर्फ मर्दों को झुकाने नहीं, मर्द भी झुकाए। قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اے ہمارے پیغمبر ایمان والی عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچا کر کے چلا کرے, اگر نظروں کو نیچا کر کے چلیں گے تو اللہ ان کی شرمگاہ کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ تو میرے دوستو, نظروں کو نیچا کرنے کے اندر انشاءاللہ ہمارے کیریکٹر کی حفاظت ہو جائے گی, اور اوپر والی جو سائیڈ ہے نا وہ بھی بیکار نہیں ہے۔ میں اس کا فائدہ بھی بتلاتا ہوں۔ دو سائیڈ ہے, چار سائیڈ تو شیطان نے اپنے لیے ریزرو کی ہے, آگے پیچھے دائیں بائیں, چار سائیڈ شیطان کی, دو سائیڈ۔ ایک نظروں کو نیچا کرو, انشاءاللہ اللہ کیریکٹر کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور اب اوپر والی سائٹ کا بھی فائدہ بتلا دو۔ اوپر والی سائٹ کا فائدہ یہ ہے, اللہ کے دربار میں آؤ, مسجد کے اندر آ کر کے وضو کرو, دو رکعت صلاۃ الحاجہ کی نماز پڑھو, دو رکعت صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھو, اور اس اللہ کی عدالت میں ہاتھ اونچے کرو, اور اس اللہ کو ہاتھ اونچے کر کے یہ کہو, اے خدا تیرا کمزور بندہ ہوں, شیطان کی چال سے میں نہیں بچ سکتا ہوں, اے اللہ تو شیطان کے پھندے سے میری حفاظت فرما لے۔ یہ اوپر والی سائیڈ کا فائدہ۔ ہاتھ نیچے نہیں آئے گا اگر سچی نیت سے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے خدا کے دربار میں ہاتھ اٹھیں گے تو انشاءاللہ ہاتھ کے نیچے آنے سے پہلے اللہ کے دربار سے توبہ کے فیصلے ہو جائیں گے, خدا توبہ کو قبول کر لیں گے۔ اس اللہ سے کہو, اے مالک ہم تو کمزور بندے ہیں, ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے, اے اللہ تو ہی ہماری حفاظت فرما لے۔ یہ اس مالک سے کہو۔ اور کب کب کہو گے؟ کب کب کہو گے ہے نا, 24 گھنٹے خطرہ ہے نا, خطرہ 24 گھنٹے ہیں۔ صبح میں بھی خطرہ, دوپہر میں بھی خطرہ, شام کو بھی خطرہ, مغرب میں بھی خطرہ, رات کے اندھیرے میں بھی خطرہ ہے, بلکہ اور زیادہ خطرہ۔ 24 گھنٹے خطرہ ہے نا, تو 24 گھنٹے کہو, دن میں 5 مرتبہ اللہ سے کہو, 5 وقت کی فرض نماز پڑھو, سلام پھیرو اللہ سے, کہو اے اللہ کمزور بندہ ہوں, ابھی مسجد سے باہر جاؤں گا کسی حسینہ کے بال میں میری آنکھیں نہ پھنس جائے, اللہ سے کہو, اللہ سے کہہ کر نکلو تو انشاءاللہ اللہ حفاظت فرما لیں گے۔ تو یہ آنکھ کی بات ہوئی۔ دوستو کان بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے, بڑی نعمت کان بھی اللہ تعالی کی۔ اس کان کو اللہ نے اس لیے دیا تاکہ دین کی باتیں سنو, حدیث کی بات سنو, نماز میں قرآن سنو, پیاری پیاری اچھی اچھی باتیں سنو, اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ کر کے میٹھی میٹھی باتیں کرو اور اس کی باتیں سنو۔ اللہ نے کان اس لیے دیے ہیں ہے نا, بیگم کے ساتھ بیٹھ کر کے۔ بیگم کا میننگ تو سمجھتے ہو نا, والسڑ میں اکثر کبھی پہلے بھی بیان کیا ہوگا کہ بیگم کو بیگم کیوں کہتے ہیں۔ بیگم کو بیگم اس لیے کہتے ہیں کہ جس دن شادی ہوئی اس دن سے وہ ہو گئے بے غم۔ غم تو سمجھتے ہو نا, ٹینشن کو غم کہتے ہیں, کہ بے غم, کہ شادی ہوئی سارے غم شوہر کے نام کے اوپر, باقی وہ ہو گئے بے غم۔ اور ہسبن کو ہسبن کیوں کہتے ہیں؟ ان کا ہنسنا ہو گیا بند۔ یہ ہسبن کی وجہ تسمیہ ہے, ان کا ہنسنا بند اور وہ ہو گئے بے غم, یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ تو بیوی کی میٹھی میٹھی باتیں سنو, اللہ نے اس کے لیے قرآن کان دیے ہیں۔ بیوی کی بات, پرائی باتیں نہیں, پارکی عورت کی بات نہیں, بیوی کی پیار بھری باتیں سنو, ماں کی پیار بھری باتیں سنو, اللہ والوں کی زبان سے دین کی باتیں سنو, قرآن سنو, اللہ کا ذکر سنو, اس کے لیے خدا نے یہ کان دیے ہیں۔ یاد رکھو, کان کا زنا یہ ہے پرائی عورتوں کی باتوں کو ٹیسٹ لے کر کے سننا, مزے لے کر کے سننا, मजे ले लेकर के सुनना पराई औरतों की बातों को, ये कान का जिना है और ये जबान भी जिना करती है मेरे दोस्तों। इस जबान के जरिए से आदमी जब पारकी औरतों से बातें करता है, खुदा के फरिश्ते उसको लिखते हैं। मेरे दोस्तों इन हाथों के जरिए से आदमी किसी पराई लड़की को फोन डायल करता है, चाहे अपने मोबाइल के जरिए से हो, चाहे अपने घर के जो है फोन के जरिए से हो, ये जो उंगलियां इस्तेमाल होगी गलत जगह के ऊपर टेलीफोन करने के लिए, कल कयामत के दिन अल्लाह ताला को उसका भी हिसाब देना होगा। अरे ये पैर चल के जाते हैं, ये पैर कभी थिएटर पर जाते हैं, कभी टॉकीज पर जाते हैं, कभी क्रिकेट के मैदान के अंदर जाते हैं, कभी ये पैर किसी लड़की के पीछे चल करके जाते हैं। इन पैरों का भी अल्लाह के दरबार के अंदर जवाब देना होगा, जवाब देना होगा। और कान खोल के सुन लो मेरे वलसाड़ के मुसलमान दोस्तों, अल्लाह के यहां बनावट नहीं चलेगी, उसके दरबार में झूठ और बनावट नहीं चलेगी। कुरान का ऐलान है, اليوم نختم على افواههم, आज कयामत के दिन हमने इंसानों की जबान पर, इंसान के मुंह पर ताला लगा दिया, इस जबान पर अल्लाह ताला लगा देंगे। वतुकल्लिमुना ايديهم, और ये हाथ बोलना चालू करेंगे अल्लाह के दरबार में। ये कुरान कहता है दोस्तों, वतुकल्लिमुना ايديهم, ये हाथ बोलेंगे कि हाथ के जरिए से किसके किसको लिखा था, किसको किसको इशारे किए थे, हाथ बोलेंगे कयामत के दिन। वतशहदु अरजुलुहुम, और ये पैर गवाही देंगे, ये पैर साक्षी पुरेंगे, पैर बोलेंगे कहां चल के गया था, कहां कहां चल के गया था, पैर साक्षी देंगे। इसलिए मेरे दोस्तों ये मत समझो हमें कोई नहीं देखता, अल्लाह देखता है। दो फरिश्ते हैं हमारी एक एक एक्शन को लिख रहे हैं, और कल कयामत की जब दर अदालत होगी, अल्लाह का अर्श होगा, खुदा की जात सामने होगी, अल्लाह सुबहानहू व ताला इंसान को खड़ा करेंगे और ये फरिश्ते सारे चौपड़े ला करके रख देंगे, तो चौपड़े के अंदर एक एक बातें निकलना चालू होगी, एक एक बातें, इंसान परेशान हो जाएगा।